नाम संकीर्तन की श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की श्री श्री निताय गौरचंद्र की शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस जागृति कार्यक्रम में। काफी अरसे बाद मैं जागृति कार्यक्रम ले रहा हूं। चल रहा था कार्यक्रम जब मैं नहीं था? हाँ नहीं, केवल एक ही हुआ, मतलब पिछले कितने 3 महीने में। हाँ मतलब लेक्चर में यू हैव टू कम। गेस्ट लेक्चर जैसे कि कौन कौन गेस्ट है? एनीवेज आप लोगों को याद नहीं मतलब नहीं हो रहा है, दिमाग को इतनी कसरत करनी पड़ रही है याद करने के लिए। तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जब हम नहीं भी रहें तो जागृति जागृत रहे, क्योंकि ये केवल ऑर्गेनाइजर्स का उत्तरदायित्व नहीं है। या अगर हम ये पूछें कि जागृति फोरम के ऑर्गेनाइजर्स कौन है, हम सब हैं, हम सब हैं। क्योंकि जब हम कुछ समय बिता देते हैं कृष्ण भक्ति में इस संस्था में, तो अपने आप बिना कहे एक उत्तरदायित्व हमारे ऊपर आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने तो उत्तरदायित्व, हम पैदा हुए इस भारत भूमि में पैदा हो गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तरदायित्व दे दिया। सोचिए, जस्ट बाय टेकिंग बर्थ वी हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो कल्पना कीजिए फिर इसके पश्चात जो कुछ हम चयन करते हैं। और इसका कारण ये है कि जितना हम परस्पर ऐसे कार्यक्रमों में उत्साह दिखाएंगे, भला किसका होगा? हमारा स्वयं का भला होगा। क्योंकि जितने भक्तों के संग में हम रहेंगे या जितने भक्तों का संग का सर्कल्स बढ़ता रहेगा हमारे चारों ओर, उतने ज्यादा हम माया के प्रहार से बचे हुए रहेंगे। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना, वो बढ़ते रहने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए। तो इसलिए हम यही आशा रखते हैं, अनुरोध करते हैं कि क्योंकि ये इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है तो इसको आप कैजुअली मत लीजिए। एक डिवोटी वो अपना साक्षात्कार बता रहे थे कि वो एक ऐसे कम्युनिटी में मंदिर के पास रहते थे और मंदिर में जो नियमित कार्यक्रम होते थे जैसे कि रोज का मॉर्निंग प्रोग्राम इत्यादि, तो हर समय एक हो जाता ना कि मंदिर के पास रह रहे हैं तो आसान है, कभी भी अटेंड रोज तो करते ही हैं। तो इनको एक टर्मिनल डिजीज हुआ जिसके वजह से ये अब केवल अपने बेड पे ही रहते, और उस टर्मिनल डिजीज के बाद उनको वैल्यू समझ में आया कि जिसको मैं इतना कैजुअली ले रहा था कि मैं कभी भी मंदिर आ जा सकता हूं इतने सारे कार्यक्रम, तो वो धीरे 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 उसका वैल्यू, अब वो जब मिस करने लगा तब उसका वैल्यू समझने लगा, तब वो धीरे धीरे उसने लिस्ट बनाई कि कौन कौन से फेस्टिवल्स उसने अटेंड नहीं किए जो उसके करने चाहिए थे जब वो स्वस्थ था, कितने मंगल आरती अटेंड कर सकता था वो जब वो स्वस्थ था, और फिर उसने जब जो भी याद करके दोनों का बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट बनाया आप लोग कॉलेज में जो कॉमर्स में होता है ना प्रॉफिट लॉस का बैलेंस शीट, तो उसने जब बैलेंस शीट बनाया तो गेस करो बैलेंस शीट में लॉस कि कितने मंगल आरती, कितने प्रोग्राम्स, कितने फेस्टिवल्स वो व्यक्ति जब कोई रीजन नहीं था अटेंड नहीं करने का जब उसने नहीं किए तो वो सब लॉस के लिस्ट में आए। व्हेन ही हैड ऑल द रीजंस टू अटेंड एंड नो रीजंस नॉट टू अटेंड, ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। और कम से कम हालांकि अभी वो नहीं है, तो कम से कम अपना शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने ये प्रण लिया कि भगवत धाम तो नहीं जाना है, वो तो नहीं होने वाला है, परंतु अगले जन्म में भक्तों का संग यदि प्राप्त हो तो आई टेक अ वाव बिफोर डाइंग दैट आई विल नॉट टेक इट कैजुअली। उन्होंने कम से कम जाते समय ये एक वाव लिया अपने स्पिरिचुअल मास्टर के फोटो के साथ। तो ये एक ह्यूमन जो साइकी है अपना, ये इसका खिलवाड़ है हमारे साथ। हमारा जो मन है वो हमारे साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करता है। एक राधानाथ महाराज का मैं रिसेंटली कोट पढ़ रहा था, मिरेकल्स सीन एवरी डे आर टेकन फॉर ग्रांटेड। बहुत सुंदर कोट है। मिरेकल्स जनरली मिरेकल्स क्या होते हैं, जो कि हम साधारणता नहीं देखते, उसको मिरेकल बोलेंगे, अजूबा, कोई ऐसी चीज जो कि अनहोनी चीज हो, अनकॉमन हो, उसको मिरेकल की कैटेगरी में आता। तो वो बोलते हैं कि व्हेन मिरेकल्स आर सीन एवरी डे वी टेंड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। अब अगर हम लिस्ट निकालें कि यहां राधा मदन गोपाल जी के संरक्षण में, उनके सानिध्य में, श्रील प्रभुपाद के इस नासिक इस्कॉन में हमको क्या क्या मिरेकल्स देखने मिल रहे हैं, उसका अगर हम लिस्ट निकालें तो आप लोग सब जानते होंगे कितना लिस्ट निकल सकता है। सो द पॉइंट इज एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू बी सेल्फ इंस्पायर्ड, we have to work upon our own inspiration. Srila Prabhupada कहा करते थे, inspiration is everywhere. Prabhupada ने अपने संस्था के तौर पर हमें हर प्रकार की प्रेरणा, चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे हम छोटे बच्चे हों, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जो भी हो, गृहिणी हो, सबके लिए श्रील प्रभुपाद ने प्रेरणा के अलग अलग स्रोत दिए हुए, सोर्स दिए, पूरा पैकेज दिया। श्रील प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को कहा, तमाल कृष्ण महाराज पूछते हैं कि प्रभुपाद हाउ कम वी सी दैट टू गॉड ब्रदर्स गेटिंग इनिशिएटेड एट द सेम टाइम, coming to Krishna consciousness at the same time, getting initiated by one guru, one advances, one doesn't. Is there a problem with the guru? Where is the problem? So Prabhupada ne bahut sundar jawab diya. My mercy is equal for everyone. तो वो एक्चुअली पर्सनली बात कर रहे थे उनके विषय में और एक दूसरे जो कि छोड़ चुके थे इसको, तो वो बोल रहे थे कि एक साथ ही हम लोग आए ये सब। तो प्रभुपाद ने कहा यू टुक इट, ही डिडंट। तो करना के प्रभुपाद के कहने का आशय क्या था कि सब कुछ रेडीली अवेलेबल है, हमको खाली ग्रहण करना है। और उस ग्रहण करने के लिए एक बार राधानाथ महाराज बोले थे, फॉर द मर्सी टू बी ग्रैब्ड यू हैव टू बी प्रेजेंट। देखो सिंपल स्टेटमेंट्स है महाराज के, लेकिन कितने प्रैक्टिकल है। फॉर द मर्सी टू बी ग्रैब्ड यू हैव टू बी प्रेजेंट। जैसे संडे भागवतम क्लास के लिए राधा गोपीनाथ मंदिर में बहुत से आते थे, उनको वो संडे भागवतम क्लास के बाद की जो खिचड़ी है वो उनको बहुत आकर्षित लगती थी, तो उस खिचड़ी के लिए बहुत से लोग आते थे। अब देखो साउथ बॉम्बे के आसपास के जो रहने वाले, वो लोग संडे मॉर्निंग 8 बजे नहीं उठते। यहां पर भी नासिक में जो डिवोटीज नहीं है, पहले भी हम लोग संडे को, एक हमारा संडे का पास टाइम क्या हुआ करता था, लेट उठना। संडे का पास टाइम क्या था, लेट उठना। एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है मटेरियलिस्ट के लिए, जिसमें कहा गया है कि व्हाट इज एक्सटेसी फॉर अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सटेसी फॉर अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, बट व्हाट इज वन काइंड ऑफ एक्सटेसी फॉर अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, when he gets up in the morning and he realizes he doesn't have to get up. Somehow accidentally he gets up and he realizes अरे आज उठने की जरूरत नहीं है, that is ecstasy, है ना? होता है कभी कभी, अनुभव किया आपने कि आपको ध्यान में नहीं है कि अरे आज छुट्टी का दिन है, काम पे नहीं जाना है, जो और आप उठ गए, जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अनुसार आप उठ गए, और उठने के बाद फिर जब पता चलता है तो फिर वाह, उसके बाद जो सुख की नींद आती है। तो पॉइंट ये है कि वो लोग खिचड़ी लेने जो आते थे संडे मॉर्निंग क्लास राधा गोपीनाथ में, तो एक बार एक अभी तो खैर वो इनिशिएटेड है, लेकिन उन्होंने मंदिर आना, हुआ क्या कि वो जैसे कि होता है ना, बहुत बहुत से लोग दर्शन करने के लिए ऐसे आ जाते, तो वो दर्शन लेने के लिए टुवर्ड्स द एंड आए, भागवतम क्लास के एंड में आए, और फिर उन्होंने देखा यहां पर खिचड़ी वगैरह, तो लाइन में खड़े हो गए और खिचड़ी मिली उनको। तब उनको वहां पर पता चला कि एवरी संडे ये खिचड़ी मिलती है, तो एवरी संडे वही टाइम पे आने लगे। फिर उनको किसी ने बताया कि देखिए आपको अगर ये खिचड़ी चाहिए तो आपको कूपन लेना जरूरी है। इनिशियली तो उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उनको कहा कि आप कूपन लीजिए। अच्छा, तो कूपन कहां से मिलता है, कहां से मिलता है ये जरूरी नहीं, कितने बजे मिलता है वो जरूरी है। फ्री है, परंतु कितने बजे मिलेगा, कितने बजे मिलेगा आपको, 8 बजे मिलेगा, 8 बजे। तो ये केवल उस खिचड़ी को ग्रहण करने के लिए वो 8 बजे आते उस कूपन को लेने के लिए, और धीरे धीरे अभी वो इनिशिएटेड डिवोटी हैं, वहां पे काउंसलर हैं, बहुत सीनियर बन गए अभी वो काउंसलर वहां के। तो ये जो महाराज का एक पॉइंट था कि क्या उन्होंने फॉलो किया, इफ यू वांट खिचड़ी बी प्रेजेंट, है ना? If you want खिचड़ी be present, खिचड़ी तो distribute हो रही है हर संडे को, काउंटर लगेगा, काउंटर कितने इस्कॉन सेंटर्स में लग रहे हैं सब संडे भागवतम क्लास इत्यादि के बाद। You cannot enjoy खिचड़ी through FM. Okay, तो the point is ki to grab the mercy we have to be present. To aaj hum ek interesting mudde par discussion karenge. Main discussion isliye keh raha hu kyunki mujhe ye interactive chahiye aap logon ki taraf se bhi. To ye do human potentials hain hamare, ek hai टू सेट थिंग्स राइट, और दूसरा है सीइंग थिंग्स राइट। क्या डिफरेंस है दोनों में, सेटिंग थिंग्स राइट, सीइंग थिंग्स राइट? व्हाट इज द डिफरेंस? Action. Hmm. माइक है, माइक। बोलिए।
फर्स्ट वाला जो है सिटिंग थिंग साइड, उसमें हम हमारे हिसाब से कोई भी एक्शंस को या फिर एनवायरमेंट को जैसा हम चाहते हैं वैसा सेट करना, और सेकंड में और कोई एक्शन कर रहा है लेकिन हम राइट एटीट्यूड से उसकी तरफ देखे।
ओके, समवेयर क्लोज। और किसी का कोई साक्षात्कार इसको लेकर? ठीक है, मैं आपको बताऊं ये दोनों में अंतर क्या है। सेटिंग थिंग्स राइट इज फॉर आवर लाइवलीहुड एंड सीइंग थिंग्स राइट इज टू लिव अ लाइफ। एक है मेकिंग अ लिविंग और एक है लिविंग अ लाइफ। क्या अंतर है दोनों में? मेकिंग अ लिविंग एंड द अदर इज लिविंग अ लाइफ। मेकिंग अ लिविंग मतलब जीविका, लाइवलीहुड। तो जीविका के लिए हम जो कुछ करते हैं, जीविका समझते हैं ना आप लोग? तो जीविका के लिए जो कुछ हम करते हैं वो है सेटिंग थिंग्स राइट। परंतु एक जीवन सही मायने में जीने के लिए हमें एक दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए। तो ये दोनों पोटेंशियल हम मनुष्यों में है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि पशुओं में और हम में अंतर ये है कि पशु जो हैं वो केवल अपने लाइवलीहुड या जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ प्रकृति ने उनके अंदर कलाएं दी हैं, उन कलाओं को इस्तेमाल कर कर वो केवल चार कार्य कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आप देखो एक मछली के अंदर क्या कला है, बिना पानी के बाहर आए जीवन भर वो पानी में तेज तैरती रहती। हम मनुष्य तैरते हैं परंतु मछली की तरह 24 घंटे पानी में नहीं रह सकते, बाहर आना पड़ता। तो हम मछलियों की नकल करते हैं परंतु वो हमारा मूलभूत, हमारी वो स्थिति नहीं है, वो कोर कॉम्पिटेंस नहीं है हमारा। एक पक्षी जो है उड़ता रहता है, उसको कोई उसके अंदर ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है उड़ने की। उसके अंदर स्वाभाविक रूप से वो कला प्रकृति ने दी है उड़ने की। पक्षी के अंदर पायलट को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो प्लेन इतना मैन्युफैक्चर होता है, उसके बावजूद प्लेन क्रैशेज होते हैं, उसके बावजूद जो भी प्लेन कितना भी ऊपर उड़ जाए, कितनी भी देर तक उड़ जाए, नीचे उतरना ही है उसको, है ना। तो वो हमारा कोर कॉम्पिटेंस नहीं है। परंतु पक्षी, मछली और पशु, जानवर इत्यादि जो भी आप देखो, उनके अंदर जो भी कलाएं हैं वो उनके जीवन निर्वाह के लिए उनको दी गई है। तो अब हम मनुष्यों के अंदर कलाएं हैं, डेफिनेटली इतने हम लोग अलग अलग प्रकार के कलाकार बनते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कलाओं को हमको क्यों दिया गया है, ताकि हम उन चार कार्यों से परे कुछ करें। अब सेटिंग थिंग्स राइट इसका अर्थ क्या है कि हमने, आप कोई भी एजुकेशन फील्ड को लो, या हम ये कहेंगे कि मैक्सिमम जो फील्ड ऑफ नॉलेज है किसी भी प्रकार का, वो क्या कर रहा है, वो फील्ड ऑफ नॉलेज क्या कर रहा है या क्या करवा रहा है उस व्यक्ति से जिसने वो नॉलेज ग्रहण किया है। सेटिंग थिंग्स राइट, रिपेयर मोड में है सब। जैसे मान लो डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर का उदाहरण लें, तो एक डॉक्टर जो है कितने 5-6 साल, मैं अभी यूके से आए, वहां पर तो कई बार 8 से 10 साल लग जाते हैं एक डॉक्टर को पूर्ण रूप से सर्टिफाइड होने के लिए, 8 से 10 साल। तो सोचिए 8 से 10 साल उसने कितने पोथियां पढ़ी, किताबें पढ़ी, मेडिकल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स इत्यादि सब कुछ जो भी ट्रेनिंग लिया, फाइनली किस लिए? ताकि ये जो मशीन है, ये शरीर रूपी जो मशीन है, इस मशीन के अंदर जब भी कोई खराबी हो तो उसकी मरम्मत कौन करता है? ये डॉक्टर करता है। और हां, हम कहेंगे कि हम मनुष्यों ने इतनी तरक्की की है उस फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में इतनी तरक्की की है कि अब अधिकांश जितने भी शारीरिक कोई प्रॉब्लम्स हैं उसका रिपेयर एक फील्ड है, उसके लिए उसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक फील्ड ऑफ नॉलेज खोल रखा है, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट। आपके आंखों में कोई तकलीफ है तो आई स्पेशलिस्ट, पूरा आई हॉस्पिटल यहां पे। तो मैं कहूंगा कि यहां पे वो तुलसी आई हॉस्पिटल है और हमारे पास तुलसी है जो हमें भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का विजन देती है। ठीक है, तो कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई बोन स्पेशलिस्ट है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, किडनी का अलग, लिवर का अलग, ब्लड का अलग, पैथोलॉजिस्ट अलग, रेडियोलॉजिस्ट अलग, हमारे पूरे शरीर के सारे डिपार्टमेंट्स की ये स्पेशलाइजेशंस बन चुके हैं और ये सब मिलके कर क्या रहे हैं? मरम्मत है ना। जैसे गाड़ी हमारी खराब हो जाते हैं तो ऑटो रिपेयर शॉप में भेजते हैं ना, तो ऑटो रिपेयर शॉप में वो सब अलग अलग जो गाड़ी में खराबी हुई है पूरा उसको ओवरऑल करते हैं, सर्विसिंग जिसको बोलते हैं। तो कहा जाता है कि आप जब अगर 40 साल के हो गए तो उसके बाद में हर साल आप पूरा सर्विसिंग कराने के लिए इस गाड़ी को भेजते रहो हॉस्पिटल, नहीं तो पता नहीं अंदर कौन से पुर्जे क्या कर रहे हैं अंदर, कोई कुछ पता नहीं। अचानक पता चलता है कि इतने सालों से हमारे शरीर के अंदर कैंसर था और फिर डॉक्टर बोल देते हैं कि आप लेट आए, या कई बार बोलते हैं आप ठीक समय पर आए, या कई बार बोल देते हैं आप लेट आए, अब दवा नहीं दुआ काम करेगी। तो हम यदि देखें कि तकलीफों को ठीक करते करते, सेटिंग थिंग्स राइट, हमारा जीवन बीत जाता। और आजकल साइंस या तरक्की किसको कहा जा रहा है? अगर आप इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखो, जैसे हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, केवल मरम्मत में कुशल हो जाना, टू बिकम एक्सपर्ट इन रिपेयर वर्क, इफ दैट इज प्रोग्रेस, वी शुड रीडिफाइन प्रोग्रेस। तो शास्त्र हमें क्या सिखा रहे हैं कि एक ऐसे मशीन को लो जिसकी मरम्मत ही ना करनी पड़े। कौन सा ज्यादा प्रोग्रेसिव है? अभी जैसे मैंने देखा कुछ सालों में, मैं देख रहा हूं कि जो जिसके बारे में मैं कह रहा था कि बॉडी ऑफ नॉलेज, तो बॉडी ऑफ नॉलेज कितने अलग अलग प्रकार के, पहले एक डिग्री कॉलेज हुआ करती थी और अगर किसी को इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो बहुत कम ऐसे कॉलेजेस होते थे, अभी तो बतेरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और इतने अलग अलग उसके अंदर डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं, ब्रांचेस खुल गए हैं। तो कुछ साल पहले ये मेडिकल फील्ड में ये डिपार्टमेंट ही नहीं था, चाइल्ड साइकैट्री। अब देखो साइकैट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट का प्रोफेशन उसका बहुत बोलबाला है वेस्ट में. क्यों? क्योंकि साइकिक केसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए साइकेट्रिस्ट ये डिपार्टमेंट उनको खोलना पड़ा. इतने लोग डिप्रेशन, आत्महत्या कर रहे हैं वगैरह इत्यादि. तो वहां तक ठीक था, जो वयस्क हैं उनको ये प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक प्रॉब्लम. परंतु आजकल बच्चे, 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे स्ट्रेस में, उनको मानसिक तनाव के प्रॉब्लम्स हैं. आप लोग को याद भी है जब आप 5 6 साल के थे, आपको कुछ मानसिक तनाव था कि जिसके वजह से आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, वो भी चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा. इट्स अ फॉर्मल प्रोफेशनल ब्रांच कॉल्ड चाइल्ड साइकेट्री. इतना ही नहीं, आप लोग दंग रह जाएंगे, देर आर डॉग साइकेट्रिस्ट ऑल्सो. कुत्तों के लिए साइकेट्रिस्ट. आप पूछोगे भाई कुत्तों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुत्तों के लिए साइकेट्रिस्ट क्यों? तो वो विदेश के जो कुत्ते हैं वो ऐसे हैं, एक तो इतने अजीबो गरीब किस्म के नस्ल के कुत्ते. जैसे इंडिया में हम लोग ज्यादातर कुत्तों को देखते हैं तो एक टाइप के कुत्ते होते हैं, अपने गली के कुत्ते स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं वो लोग. हाँ, बंबई जैसे शहरों में जाओ या गंगापुर रोड साइड जाओ तो वहां पर आजकल लोग अलग अलग प्रकार के कुत्ते लेके घूमते हैं. परंतु साधारणतः हम तो एक नस्ल के कुत्तों को जानते हैं, वहां पर इतने अलग अलग प्रकार के. एक बस स्टॉप पे एक आदमी कुत्ते के बगल में खड़ा था, किसी का पालतू कुत्ता था, तो उसको लात मारे जा रहा है. तो इसका दोस्त पूछता है कि तू लात क्यों मार रहा है इसको, क्या क्या बिगाड़ रहा है तेरा, ये बेचारा खड़ा है चुपचाप. नहीं, मुझे बिस्किट खिलाना है इसको. तो बिस्किट खिलाना, लात क्यों मार रहा है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका मुंह कहाँ है और पिछवाड़ा कहाँ है, ये चारों तरफ इतने बाल हैं इसको, तो लात मारो, भोकेगा तो समझ में आएगा कि ये मुंह है इसका. तो ऐसे कुत्ते होते हैं आजकल, ये समझ में नहीं आता है कि तो ये कुत्ते वहां के, जिनको इतना ऐशो आराम दिया जा रहा है वहां पे, तो एक प्रॉब्लम आजकल वो लोग वहां पे फेस कर रहे हैं कि ये भौंकना बंद कर दिए कुत्ते बहुत से, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है. कुत्ते का कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर क्या है, इंडिया में एकदम अच्छे से फॉलो करते हो कि वो कोई जगह नहीं देखते, वो कोई समय नहीं देखते, वो किसी की मनोदशा नहीं देखते, नहीं. अपना नियत कर्म करते हैं, देयर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बहुत बखूबी निभाते हैं वो लोग भोकना. परंतु वहां पे ये प्रॉब्लम है, नो मोर बार्किंग. तो वो लोग फिर ये डॉग साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, और डॉग साइकेट्रिस्ट पता नहीं क्या इनके पास इलाज भी है कि वो कुत्ते कैसे भौंकना शुरू करें फिर से. अच्छा, एक और बहुत अननेचुरल प्रॉब्लम वहां पर देखा गया है, ओबेसिटी, वेट लॉस फॉर डॉग्स. वो उनके अंदर मोटापा आ रहा है, कुत्तों के अंदर मोटापा, क्योंकि उनको ऐसे कृत्रिम तरीके की चीजें खिला रहे हैं वो लोग, जो कि उनके प्राकृतिक शरीर के लिए वो सूटेबल नहीं है. अलग अलग प्रकार का जो केमिकल युक्त मांस और पाउडर्ड और ये वो सब कुछ. तो मैं ये कह रहा हूं कि टू सेट थिंग्स राइट, कितने फील्ड्स ऑफ नॉलेज हैं. इंजीनियरिंग, आप कोई इंजीनियर को लो कर कह रहे हैं, सब प्रकार की मरम्मत कर रहे हैं. लॉयर को लो, क्या कर रहे हैं, जिसके लीगल प्रॉब्लम्स हैं उसको रिपेयर करो. सो यस, हम लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं टू सेट थिंग्स राइट हमारी लाइवलीहुड के लिए. परंतु जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो कृष्ण भक्ति में हमें क्या बताया जाता है, हाउ टू नॉट जस्ट सेट थिंग्स राइट इन योर लाइफ, हाउ टू सी थिंग्स इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव. जैसे कि धृतराष्ट्र, अब देखो धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल है हु वॉन्टेड टू सेट थिंग्स राइट फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली. तो कोई बुरी बात है? साधारणतः आप यदि किसी गृहस्थ को पूछो कि आप किस में लगे हो, भाई मेरे और मेरे परिवार के भरण पोषण, तो कोई गलत बात नहीं. धृतराष्ट्र वही तो कर रहा था, वो इतने प्रयास कर रहा था ताकि उसका जो बेटा है दुर्योधन वो उसको एक अच्छी जिंदगी मिले, है ना. हर पिता क्या चाहेगा, बच्चों की अच्छी जिंदगी, भविष्य में अच्छी जिंदगी उसको मिले, वही धृतराष्ट्र चाह रहा था. प्रॉब्लम क्या है फिर धृतराष्ट्र के अंदर, क्या प्रॉब्लम था उसके अंदर कि नहीं था? हाँ, दृष्टि नहीं थी, वो तो पता है पैदाइशी अंधा था वो. और क्या प्रॉब्लम, बस उतना ही. हाँ, दूसरे का अधिकार, अर्थात अपने पुत्र को उसने केवल सही या ऐशो आराम का जीवन कैसे जीना है वो दिलाने की कोशिश करी. अपने पुत्र को जो सेकंड एस्पेक्ट है सीइंग थिंग्स राइट, वो कभी नहीं सिखाया धृतराष्ट्र ने. तो एक पिता, एक माता का कर्तव्य क्या है, नॉट टू जस्ट सेट थिंग्स राइट फॉर द चिल्ड्रन. हाँ भाई, हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, हमारा बच्चा बेस्ट फैसिलिटीज उसको मिली हुई है हमारी तरफ से, सारे वीडियो गेम्स हैं, मोबाइल है, जितने उसके खेल कूद के सामान हैं वो सब कुछ हैं, कपड़े ये सब कुछ, स्कूल इत्यादि, सेट थिंग्स राइट. बट देन वी फाइंड वॉट इज हैपनिंग विद दोज चिल्ड्रन इफ दे आर नॉट टॉट हाउ टू सी थिंग्स राइट. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हाल ही में इतने माता पिता मेरे पास आए बच्चों के कंप्लेंट्स लेकर, सब कुछ अवेलेबल है बच्चों के लिए, द बेस्ट, कहां रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सब कुछ अवेलेबल है एज फार एज सेटिंग थिंग्स राइट. परंतु परेशान है बच्चों के स्वभाव को लेके, व्यवहार को लेके. और ये सब भारत में भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि भारत इससे छूटा हुआ है. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे ह्यूमन पोटेंशियल या ह्यूमन सक्सेस को केवल एक दृष्टिकोण से मत देखिए. तो यहां पे सेटिंग वर्सेस सीइंग हमारा डिस्कशन ये दो चीजों पर चल रहा है. तो इसको मैंने, अगर हम ये दो वर्ड्स को लें, somebody might have proper 6x6 eyesight, एकदम कोई हो गए उसके 50 साल हो गए चश्मा नहीं लगा हुआ है, eyesight बहुत अच्छा है. प्रश्न है what about the vision, दोनों में अंतर क्या है, विजन में और आईसाइट में अंतर क्या है कि नहीं है, कोई डिफरेंस है दोनों में?
बोलिए. आईसाइट से हम जो सामने है वही देखते हैं, विजन मतलब हम फ्यूचर जो है वो देखने की कोशिश करते हैं।
फ्यूचर चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु, जैसे कि हमारी चर्म चक्षु मतलब फ्लैशी आईज, चर्म का अर्थ होता है चमड़ी, चमड़ी को चर्म कहते हैं संस्कृत। तो ये जो चर्म चक्षु हैं, चक्षु मतलब आंखें, तो ये जो चमड़ी से बनी हुई आंखें हैं, ये आंखों से हम क्या देखते हैं, क्या वो सच्चाई है, असलियत है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। ये आंखें हमें जो दिखाती हैं, क्या वो सत्य है या नहीं। एक छोटा सा वीडियो आपको हम दिखाएंगे इस विजन और साइट के कनेक्शन में। सर हम बिलबोर्ड पे क्या देखते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट दिखाया है ना, मैगजीन्स के कवर पेज पर, ये स्क्रीन के ऊपर बोलते ना, वन इज रियल लाइफ, वन इज रियल लाइफ। तो अक्सर जब हम स्क्रीन के ऊपर, टीवी स्क्रीन के ऊपर या मूवी स्क्रीन के ऊपर या बिलबोर्ड्स के ऊपर, मैगजीन्स के कवर पेज पे अंदर जो भी कुछ, ये सब इतना चमक धमक दिखती है आंखों से, जो कुछ देख रहे हैं हम चर्म चक्षु, उसके पीछे की असलियत बताई गई है कि कैसे उसको हमारे आंखों को झांसा देने के लिए बनाया गया। ऑप्टिकल इल्यूजन्स बोलते हैं इसको, पश्यन अपि न पश्यति, कि जो हमारी आंखें हमको दिखा रही हैं, प्रश्न हमें हमारे ज्ञान से ये पूछना चाहिए कि क्या उसमें सच्चाई है, और फिर उस सच्चाई को जानने की कोशिश करना। तो हाँ, ये बहुत ही एक फंडामेंटल सी बात है, जब हम आते हैं कृष्ण भक्ति में या कोई कृष्ण भक्ति में नहीं भी आए तो ये बहुत ही एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो लोग फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, कि कैसे अपनी जिंदगी को केवल इन चर्म चक्षु से न देखें, या जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को चर्म चक्षु से न देखकर उसके परे ज्ञान चक्षु या विज्ञान चक्षु से उसे हम देखें। तो अब यदि आपको ये उदाहरण हम दें, ताजमहल जब बन रहा था, मेसन, मेसन को क्या कहोगे आप, जो मिस्त्री, मिस्त्री, तो तीन मिस्त्री ताजमहल, हालांकि बहुत से लगे हुए थे, परंतु तीन मिस्त्रियों को पूछा गया जब वो अपने मिस्त्री का काम कर रहे थे, पत्थर लगा रहे थे, क्या कर रहे थे? मेसन्स मीन्स स्टोन लेइंग पीपल, जो पत्थर लगाते. तो पत्थर लगाते हुए इन तीन मिस्त्रियों को पूछा गया, तीनों एक ही काम कर रहे थे, पत्थर लगा रहे थे ताजमहल के, क्या कर रहे हो? प्रश्न क्या था? What are you doing? Difficult question है? नहीं ना, बहुत easy question है. What are you doing? हो सकता है कि हम में से कोई जो व्यक्ति ने प्रश्न पूछा उसका मजाक उड़ाए. ये क्या बेहुदा प्रश्न है? अरे सामने जब वो देख रहा है कि तीनों पत्थर लगा रहे हैं तो उसको दिख नहीं रहा है क्या? मे बी ही डजंट हैव प्रॉपर आई साइट. हमारा डिस्कशन किस पे चल रहा है? विजन वर्सेस आई साइट पे डिस्कशन चल रहा है. तो जो सबसे पहला मिस्त्री था उसने जवाब दिया इस प्रश्न का कि दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूं. I am laying stones. अब मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से, क्या उसने गलत कहा? क्या उसका जवाब गलत था? क्या कहो गया, सही था या गलत था? सही था ना. ये कहना कि मैं पत्थर लगा रहा हूं, सही जवाब था, वही वो कर रहा था. जब दूसरे मिस्त्री से पूछा गया जो कि उसके बगल में ही वही काम कर रहा है, दोनों एक ही प्रकार का वेतन ले रहे हैं, एक ही शहंशाह के अंडर हैं, एक ही बना रहे हैं ताजमहल और एक ही प्रकार के पत्थर लगा रहे हैं, दूसरे को जब पूछा गया तो उसने कहा मेकिंग माय लाइवलीहुड. मैं क्या कर रहा हूं? मेरी जीविका कर रहा हूं, यहां पे जीविका कमा रहा हूं. अब इसका जवाब पिछले वाले के जवाब से अलग है कि नहीं, सबसे पहले बताओ. अलग है ना, गलत है या सही है? इसका भी सही है, पहले वाले का भी सही था, इसका भी सही है. कुछ अंतर है, लेकिन अलग है सही है. अब मेरा प्रश्न है, अंतर है? अंतर का अर्थ कुछ समझ में आ रहा है आपको कि यहां पे दोनों के दृष्टिकोण में अंतर हो रहा है. प्रश्न क्या है यहां पे, मुद्दा क्या है कि दोनों के दृष्टिकोण में अंतर दिख रहा है. और फाइनली जब तीसरे मिस्त्री को पूछा गया, वो भी वही कर रहा था, लेइंग स्टोन्स, एग्जैक्टली द सेम एक्ट द थर्ड मेसन वाज आल्सो डूइंग. उसको जब पूछा गया तो उसने जवाब दिया आई एम बीइंग इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग ऑफ वन ऑफ द एट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. अब आप बताइए कि किसका जवाब आपको एक सोच में डाल रहा है, किसका जवाब सोच में डाल रहा है? तीसरे वाले का. तीनों का जवाब सही है, गलत नहीं है तीनों का जवाब. उसी प्रकार से हम हमारे जीवन को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो निर्धारित करेगा कि हम वास्तविक रूप में इस मनुष्य जीवन में तरक्की कर रहे हैं या नहीं. नहीं तो आप जाओ, साधारणतः सभी जो किसी भी कर्म में लगे हुए हैं, जो भी इतने सारे कार्य कर रहे हैं, उनको जाके पूछो कि आप ये नौकरी क्यों कर रहे हैं. जैसे अगर यही प्रश्न हम बाहर जाके इंटरव्यू करें, लोग दिन भर लगे हुए, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, जाके उनसे पूछे कि आप नौकरी पेशा धंधा वगैरह क्यों कर रहे हो, तो अक्सर हम अरे क्यों कर रहे हैं भाई, ये क्या फालतू प्रश्न पूछा, तुम नहीं करते हो क्या? उसका पहला क्वेश्चन हमारे ऊपर क्या आएगा, तुम नहीं करते हो क्या, तो क्यों कर रहे हो? तो अक्सर लोग क्या कहेंगे, भाई पापी पेट का सवाल है, क्यों कर रहा हूं, इसके लिए कर रहा हूं, परिवार को चलाना है, सब कुछ करना है। जैसे मैं जब राधा गोपीनाथ मंदिर में था तो वहां पर वो मंदिर के रेनोवेशन का काम शुरू हुआ और बहुत अलग अलग प्रकार के एजेंसीज आते थे, जैसे कि मिस्त्री एजेंसीज, मतलब अलग अलग प्रकार के मिस्त्री आते थे, पेंटर्स आते थे, प्लम्बर्स आते थे, फिर जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं वो लोग आते थे, टाइल का काम करते हैं वो लोग आते थे, फिर वो वुडवर्क चल रहा था, कारपेंटर आते थे, फिर वो गोल्ड लिफिंग, जैसे हमने डोनेशन बॉक्स पे किया तो गोल्ड लिफिंग वाले सब अलग अलग एजेंसीज आते थे और सुबह 10 बजे से लगे रहते थे, 10 बजे आते थे सब लोग और सब लोग लगे हुए हैं करने। और एक बार मैंने देखा, वो देखते थे हमको, इतने सारे 100 से भी ज्यादा ब्रह्मचारी सब सर मुंडवाए हुए, ये सब पहने हुए, और हम लोग बैठ के जप कर रहे हैं और ये लोग लगे हुए हैं, कोई वो ठोक पीट का काम, ये वो दिन भर 10 हो गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, वो देखते हैं, कभी कोई आता है मंदिर में वो माला झोली लेके चला जाता है, फिर कोई आता है फिर चला जाता है। तो मैंने एक बार सुना, वो लोग चर्चा कर रहे थे आपस में, ये लोग दिन भर करते क्या है, तो ये दो कारपेंटर आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने दूसरे से पूछा, क्योंकि वो लोग वो वहां के थे, राजस्थान के थे, तो उनकी भाषा मुझे समझ में आ रही थी, उनको लगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे समझ में आ रही थी, तो एक दूसरे को पूछता, ये लोग यहाँ पे करते क्या है, तो वो दूसरा इसको पूछता है, अरे ये छोड़ो ये लोग क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अरे हम क्या कर रहे हैं, पिछले एक महीने से लगे हुए हैं, ये लोग ना तो कहीं काम पे जाते हैं, हाँ ना, और वो लोग लंच उधर ही लेते थे मंदिर में, तो लंच में वो लोग अभी पूरा राजभोग का पूरा स्प्रेड सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता था, तो कितने आइटम्स, 13 आइटम राजभोग के, फिर बाकी जो रेगुलर 2 सब्जियां, दाल चावल, गरम गरम फुलके, ये सब कुछ। तो वो लोग उसकी उनकी चर्चा क्या थी कि ये ना तो नौकरी जाते हैं, ना कोई बीवी बच्चे इनके, और दिन भर ये लोग यहां पर माला झोली लेके घूमते रहते हैं, हम लोग इनके मंदिर में लगे हुए हैं ये ठीक करने में वो ठीक करने में, और हमारा तो एक महीने 2 महीने के बाद ये काम हो जाएगा, फिर से हम तो हमारा टिफिन लेके घूमेंगे जो भी हो, 4 रोटी और सब्जी लेके, और इनके तो यहां पे जलसे चल रहे हैं। तो उसने बोला, प्रश्न ये है कि हम क्या कर रहे हैं हमारी जिंदगी के साथ, व्हाट आर वी डूइंग। तो देखिए, जब हम हमारे मनुष्य जीवन में ये प्रश्नावली शुरू करें, कौन सी प्रश्नावली, व्हाट एम आई डूइंग विथ माय लाइफ, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। नहीं तो जब तक ये प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा है तब तक वो केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए, लाइवलीहुड के लिए अपने कलाओं का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि एक पक्षी की जो कला है उड़ने की, वो पक्षी उस उड़ने की कला का इस्तेमाल केवल और केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए कर रहा है। जैसे राधानाथ महाराज बता रहे थे कि वो अमेरिका में गीता नगरी, वहां पर मैंने भी देखा है, गीता नगरी में जब गया था जहां भक्ति तीर्थ महाराज उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो राधानाथ महाराज वहां पर बहुत अच्छा फार्म है इस्कॉन का, तो फार्म पर शाम के समय उन्होंने देखा इतने जुगनू पेड़ के ऊपर, जैसे ऐसे लगा हुआ था कि लाइट्स लगा दिए पेड़ के ऊपर, इतने जुगनू टिमटिमा रहे थे। तो वो इतना जप कर रहे थे शाम के समय जुगनू को देखते हुए, इतना आनंद उनको हो रहा था। तो जिस घर में वो रुके हुए थे वो भी प्रभुपाद के डिसाइपल महाराज के गुरु बंधु, तो वो आए और वो महाराज के बगल में बैठ गए और वो भी देख रहे हैं जुगनुओं को। महाराज बोले सो ब्यूटिफुल जस्ट लुक एट देम। तो फिर इन्होंने कहा यू वॉन्ट टू नो वाई दे आर ग्लोइंग लाइक दैट। महाराज बोले वाई, तो उन्होंने कहा दे आर इन्वाइटिंग द अदर पार्टनर फॉर सेक्स लाइफ बाई डूइंग दैट। तो महाराज बोले वाई यू हैड टू टेल मी दैट। बोले दैट इज अ फैक्ट। बोले ऑल दी स्पीशीज यू विल फाइंड वंडरफुल थिंग्स। एक मेंढक है वो टर्टर कर रहा है, टर्टर कर रहा है, वही कारण है। वो कोयल जो इतना मधुर आवाज में वो गा रही है उसका भी वही कारण है। तो फाइनली उनके अंदर आप देखोगे चाहे जुगनू हो, कोयल हो, मेंढक हो, जो भी हो, चाहे सारी कलाएं जो उनके अंदर है, उन कलाओं का इस्तेमाल वो किसके लिए कर रहे हैं? एंड रिजल्ट क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। फिर हम देखते हैं मनुष्य समाज में, हाँ हम बहुत तरक्की कर लिए हैं, हमारे अंदर कैसी कैसी कलाएं हैं, बहुत अच्छी बात है, कुशलताएं हैं, कलाएं हैं। एंड रिजल्ट क्या है? उसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है वो निर्धारित करेगा हम पशुओं से अलग हैं कि नहीं। इफ यू नो अ ककू इज सिंगिंग सो स्वीटली बट फाइनली फॉर सम सेंशुअल डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड, एंड इफ अ ह्यूमन बीइंग सिंग्स लाइक दैट सेम बट एट द एंड just wants that, what is the difference between that bird or that animal and the human being? Prashni ye hai. To ab hum aate hain is mahatvapurna prashn par. Ye sab kuch parshvabhumi thi. ये बैकग्राउंड सेट करना था, सेटिंग थिंग्स राइट पे है ना हम लोग, तो सेटिंग द बैकग्राउंड, जैसे भगवद गीता का ये चैप्टर है सेटिंग द सीन, ऑब्जर्विंग द आर्मी सेटिंग द सीन, तो वैसे ही ये सेटिंग द सीन। तो अब प्रश्न है व्हाई एम आई चैंटिंग? तो यहां पर अलग अलग रीजंस सामने आपके, कि जब कोई इस्कॉन से जुड़ता है तो भाई इस्कॉन से जुड़ने के बाद ओम नमः शिवाय जप तो नहीं करेगा, है ना? तो भक्त समुदाय में यदि उसे पॉपुलैरिटी चाहिए तो क्या उसको पॉपुलैरिटी दिलाएगी भक्त समुदाय में? जब वो कहेगा कि मैंने जप कौन सा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रारंभ किया, तो सब लोग ओ अरे आप चार माला शुरू कर दिए, चार दिन में चार माला, क्या बात। फिर तो फिर उसको लगता है कि चार दिन में चार माला मतलब आठ दिन में आठ माला, वो करना है मुझे। तो जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरुआत में हम प्रारंभ करते हैं तो बहुत वाहवा मिलती है ना, शुरुआत में बहुत वाहवा मिलती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि हम जब शुरुआत में आए थे चार माला हमने की तो लोग महाप्रसाद लेकर आ रहे हैं, गार्लैंड लेकर आ रहे हैं, बाबू जी चार माला शुरू की है। उसके बाद में जब दीक्षा हो जाती है ये वो, और रात के 10 बजे 15 माला हुई एक माला, तो लोग हैं अभी तक 16 माला नहीं हुई तुम्हारी? अरे भाई तुम ही थे जब मैं चार माला करता था, पूरे 24 घंटे में मालाएं पहनाते थे मेरे को, अब 15 माला कर चुका हूं मैं, अभी भी 12 नहीं बजे हैं और ये तुम्हारा कंप्लेंट है। तो ये एक रीजन हो सकता है, इज इट अ वैलिड रीजन और इनवैलिड रीजन, प्रश्न ये। क्या कहोगे आप? माय chanting Hare Krishna in ISKCON for this reason, is it valid or invalid? Sharma rahe hain aap log, ha? Publicly question puch rahe hain. इनवैलिड है, सभी मानते हैं, कोई नहीं कि वैलिड है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा है, एवरीवन उसी मत के, मैच फिक्स्ड है। क्यों भाई, प्रेस्टीज नहीं है? इज इट नॉट, डोंट यू फील प्रेस्टीजियस टू चैंट हरे कृष्णा? क्या नील माधव प्रभु, व्हाट डू यू से, क्या कहोगे आप? देखो यहां पे दो चीजें हैं, उसी वर्ड को या सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा। चैंटिंग से प्रेस्टीज मिलती है एंड चैंटिंग इज प्रेस्टीजियस, दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों वाक्यों में शब्दों का फेर यहां वहां है बस, क्या अंतर हुआ दोनों में? क्या हुआ नील माधव प्रभु, आपने कहा था? दूसरे में दूसरा सेंटेंस आपको समझ में आया? इट इज प्रेस्टीजियस टू चैंट हरे कृष्णा, और आपने कौन सा सेंटेंस यूज किया था? बाय चैंटिंग हरे कृष्णा आई विल गेट प्रेस्टीज, होकर क्या? किसको समझ में आया दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस, किसको समझ में आया? श्रीपाद प्रभु बोलिए, एक मिनट माइक आ रहा है आपके पास।
चैंटिंग करने से प्रेस्टीज मिली और चैंटिंग करने में जो प्रेस्टीज है, ये डिफरेंस है दोनों।
तो क्यों है चैंटिंग, तो दोनों में ज्यादा अच्छा कौन सा है?
चैंटिंग करने से जो प्रेस्टीज मिलती है
वो अच्छा है।
चैंटिंग करने से यानी चैंटिंग में जो समाधान मिलने से जो प्रेस्टीज मिलती है अंतरात्मा को।
चैंटिंग में एक में महामंत्र की महिमा आती है और दूसरे में एक्शन आती है। मैं चैंटिंग करता हूँ इसलिए मुझे प्रेस्टीज मिलती है, मैं खुद के एक्शन से बोल रहा हूँ, और प्रेस्टीजियस महामंत्र है इसके लिए मुझे प्रेस्टीज मिल रहा है।
अच्छा, आप लोग थोड़ा और क्लोज आ रहे हैं, और कोई? देखिए, घमंड और गर्व दोनों में अंतर क्या है? घमंड और गर्व, ये दो शब्द सुने होंगे आप, दोनों में अंतर क्या है? कहेंगे एक फॉल्स ईगो है और एक ट्रू ईगो। तो भगवान का नाम, जैसे इन्होंने कहा कि महामंत्र है ये, भगवान श्री कृष्ण का नाम महामंत्र युग धर्म में लगने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। साउंड्स गुड। और मैं कर रहा हूं महामंत्र, इसलिए महामंत्र प्रेस्टीजियस है। क्यों? क्योंकि कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? उसको कहेंगे घमंड। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट, आप इसको गलत मत समझिए। इसलिए मैं कह रहा था विजन, हमको सही विजन रखना है कि युग धर्म में भाग लेने का अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, इट्स अ प्रेस्टीजियस, इट्स अ प्रिविलेज, जैसे महाराज कहते थे, टू रेंडर सर्विस इज नॉट अ बर्डन, इट्स अ प्रिविलेज। किसी का कोई प्रश्न है? ये क्लियर हुआ ये पॉइंट? अच्छा, सेकंड रीजन, टू फ्री माइसेल्फ फ्रॉम कर्म बंधन. करेक्ट और इनकरेक्ट, सही है या गलत है? आप लोग अभी और डर के बोल रहे हो, पता नहीं क्या आएगा बाहर. सही है ना? तो फिर इसके लिए जप करना चाहिए क्या? इसके लिए जप करना चाहिए? कोई अगर आपसे पूछे कि क्या आप आपके कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जप कर रहे हो, आप कहोगे क्या, हां या ना? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए या माइक पे बोलिए, थोड़ा उसको इलैबोरेट भी कीजिए.
प्रभु जी, टारगेट वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट ऑटोमेटिकली हैपेंस. जो निवृत्ति भाव जो है, मतलब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो जो एक्चुअल चीज जो प्राप्त होती है वो नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसको उसको वो साइड करते हुए अगर आप प्योर भाव से करोगे तो अपने आप बंधन कटेंगे.
ठीक है, तो यदि मैं ये प्रश्न पूछूं कि कर्म बंधन से छुटकारा क्या मुझे कॉन्शियसली प्राप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कर्म बंधन से छुटकारा क्या मुझे उसके ऊपर कार्यरत रहना चाहिए, या जैसे आप कह रहे हैं कि वो होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है,
वो होएगा ही,
होगा ही,
शास्त्रों में लिखा है,
बाय प्रोडक्ट.
बाय प्रोडक्ट मतलब फोकस वो करेंगे तो फिर जो हाईएस्ट चीज है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा आपका.
अच्छा ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि कर्म बंधन से मुक्ति क्या वो एक स्वार्थीपना है, अगर कोई फोकस करे तो, अगर कोई डिवोटी, प्रैक्टिसिंग डिवोटी इफ फोकसेस ऑन रिलीफ फ्रॉम कर्म बंधन, इज दैट सेल्फिश or not? Huh? Is that being selfish? Offensive? Acha? Kyo?
Offenses jo hum roz decide karte hai usme se ek hai ki hari naam ki mahima ko wo vedic karma kand ke saman samajhna.
कांड कैसे? अभी भाई अगर भगवान खुद बोल रहे हैं अहम तो हम सर्व पापे भी, कि मैं तुम्हें सब कर्मों के बंधन से मुक्त करूंगा, तो भगवान कर्मकांड बोल रहे हैं?
नहीं, उसमें वो बोलते हैं कि आप मुझे सरेंडर करो और फिर जो कुछ तुम्हारे पाप कर्म,
तो मैं चैंटिंग करने के लिए सरेंडर ही तो कर रहा हूँ ना. चैंटिंग करने के लिए मैं सरेंडर कर रहा हूँ, और अगर मैं ये एक्सपेक्टेशन रखूं जो भगवान ने मुझे एक्सपेक्टेशन गीता में दिया है, अहम तो हम सर्व पापे भी, तो उसमें गलत क्या है?
जब करना स्टार्ट करना मतलब सरेंडर नहीं
होता. ओके, एवरीवन एग्रीज टू दिस? कि आप लोग और कंफ्यूज हो रहे हैं? एक मिनट माइक आ जाना. और कोई विचार आप लोग हैं जो मेन मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं उसके आसपास ही घूम रहे हैं आप लोग? फाइनली वो बच्चे, अगर कोई अगर ये कहे कि ये बच्चा अच्छा पढ़ लिख लेगा तो इसको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा तो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा. नहीं तो ये घुमा फिरा के हुआ क्या मेरे लिए, है ना? है ना? फाइनली स्वार्थ हो गया ना उसमें, है कि नहीं? हाँ, तो मैं इसी लॉजिक को समझाना चाहता हूं। अगेन, इसके अंदर कोई खराबी नहीं है, मैं बोलना चाहूंगा, एक हिंट दे रहा हूं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सपेक्टिंग कर्म बंधन रिलीफ। क्यों? क्योंकि यदि मेरा ये विचार है कि मेरे कर्म बंधन के वजह से मैं भगवान की भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, मेरे कर्म बंधन के वजह से मेरे शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, इतनी बीमारियां हैं, हाँ, लिमिटेशंस हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो यदि हरिनाम मेरे कर्म बंधन से मुझे मुक्त कराकर एक ऐसा शरीर दे जिसमें मैं निरंतर भगवान की सेवा कर सकूं, तो उसे स्वार्थ कहोगे या निस्वार्थ कहोगे? सो दैट इज, देयर इज नथिंग रॉन्ग। जैसे कि जब श्रील प्रभुपाद बीमार हुए तो प्रभुपाद ने कहा कि आप नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। क्या प्रार्थना कर सकते हो? तब नरसिंह आरती इंट्रोड्यूस हुई। नरसिंह भगवान से प्रार्थना कीजिए कि श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक हो, वो थोड़ा और जिए, ताकि क्यों? ताकि अच्छा राजभोग खा सके, ताकि और अच्छे अच्छे कंट्रीज में घूम सके? नहीं, ताकि प्रचार प्रचार कार्य, बद्ध जीवों का उद्धार ज्यादा कर सके। सो अगेन, हमें इंटेलिजेंट बनना है। हमारे फिलॉसफी, वही स्टेटमेंट्स हमारे फिलॉसफी के, उन स्टेटमेंट्स को अगर हम सही दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे सालों साल। अगर कोई हमको ये प्रश्न पूछता है और अगर हम कंफ्यूज्ड उत्तर दे रहे हैं तो वो और कंफ्यूज होके चला जाएगा। हाँ, कि भगवत धाम, हाँ ये भी कहा गया है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि, चैतन्य महाप्रभु कहें आई डोंट माइंड टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन। और फिर वही भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे धाम को प्राप्त करो। तो यदि आपके पास मैच्योरिटी नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और दूसरों को भी कंफ्यूज करोगे कि चल क्या रहा है, भगवत धाम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों, क्या कहोगे आप? भगवत धाम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कि इधर ही रह के हर जन्म में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपकी भक्ति अगर प्राप्त हो रही तो मुझे अगला जन्म लेना, कोई मुझे उसमें एतराज नहीं, क्या कहोगे आप? भगवत धाम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? स्वार्थ, हाँ स्वार्थी हो गए ना। हाँ, ओ सो दोज हु गो बैक होम बैक टू गॉडेड आर नॉट ग्रेट पर्सनैलिटीज। और कोई भगवत धाम जाना, इसके अंदर स्वार्थ है या निस्वार्थ है, बताइए मुझे। मैं सब कुछ कर रहा हूं, कोई अगर पूछे कि इतना सब तुम मंगल आरती के लिए उठ रहे हो, सब कुछ तुमने त्याग किया, बलिदान कर दिया, चार नियम पालन, 24 घंटे सब कुछ, ये कृष्णा कृष्णा कृष्णा, क्यों? और मैं कहूं कि मुझे इस जन्म खत्म होने के पश्चात, मरने के पश्चात मुझे भगवत धाम जाना है, और वो कहे तो ये तो एक स्वार्थी इच्छा हो गई फिर से, इज इट नॉट? इट्स अ सेल्फिश डिजायर। यू वॉन्ट दैट, यू वॉन्ट टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स एंड गो टू अ प्लेस वेर देर आर नो प्रॉब्लम, सेल्फिश। I don't mind whatever fees I have to pay. If purity is the fees I have to pay, I will use purity to go back home, back to God. so you mean to say that only the preachers are selfless? Those who are Babaji's, those who are doing their bhajan alone and want to go back home, back to Godhead, are selfish people. So that's what I'm saying. I understood these two categories. So my question is that those who are bhajanandis, there are technical terms for that, bhajanandi and goshtyanandi. So goshtyanandis are selfless, bhajanandis are selfish. Better. Everyone agrees? नहीं अभी अगर मान लो फॉरगेट अबाउट बाबा जी और नो बाबा जी नॉर्मल रेगुलर गृहस्थ अपना घर परिवार चला रहा है वो कोई बड़ा प्रचारक नहीं है कोई काउंसलर नहीं है वो कोई बद्ध जीवों को ना मुक्ति नहीं दिला रहा है अपनी साधना कर रहा है और उसने जो लेक्चर्स में सुना है भगवद गीता में पढ़ा है एक उसकी इच्छा है कि भाई मैं जो इतना ईएमआई भर रहा हूँ इतने परेशानी में सब कुछ अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ तो मुझे बताया गया है कि भगवत धाम में सब कुछ नहीं है तो मुझे भगवत धाम जाना है हा? कोई वहां पे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है रात को कुत्ते नहीं भोंकते तो क्या वो स्वार्थी हो गया मेरा प्रश्न है इस इच्छा को अगर वो रखे तो क्या वो स्वार्थी हो गया ओके ये एक थोड़ा क्लोज आंसर है एक्चुअल पोजीशन लेकिन मैंने अभी अभी आपको आंसर दिया है आप लोग फोकस नहीं कर रहे हैं भूख लग रही है क्या Just now I gave the answer. Nobody is focusing on that. Okay, so what is the intention? Aap itne upar kyun baithe? Yahan pe seat khali hai. यही मैंने आंसर अभी दिया गुड गुड आपका सीट नहीं आपके विचार भी बहुत ऊंचे हैं दिस इज व्हाट मैंने अभी भी क्या आंसर दिया दैट माय मुक्ति फ्रॉम कर्म बंधन एंड गोइंग बैक टू गॉड हेड विल गिव मी अ बॉडी विथ विच आई कैन कॉन्स्टेंटली सर्व कृष्णा That is the reason I want mukti from karma bandhan and mukti from material world. That is selfless. That is selfless. Simple. तो इस भौतिक संसार में भी भक्ति की जा सकती है चैतन्य महाप्रभु ने जो लेवल दिया है क्योंकि वो भौतिक शरीर को लेते हुए भी निरंतर भक्ति कर सकते हैं जैसे माताजी ने कहा कि हम उस लेवल पर नहीं है कि हम भौतिक शरीर में रहते हुए भी निरंतर भक्ति करें अब ये भौतिक शरीर के वजह से हमको इसको सुलाना पड़ता है इस भौतिक शरीर को खिलाना पड़ता है इसको इसकी धुलाई करनी पड़ती है क्या कुछ ये शरीर के लिए सोचिए पूरे 24 घंटे में कितना समय हम केवल ये शरीर हमारा ठीक रहे और उसमें से 2 घंटे फिर ये थोड़ा सा ठीक रहता है शरीर चलो अब माला उठाओ परंतु भगवत धाम में भगवत जो भगवान के पार्षद है उनका शरीर कैसा है उनको कोई भूख प्यास की तकलीफ नहीं है वहां पर कोई गंदगी नहीं कोई पसीना नहीं कोई बदबू नहीं तो इमेजिन करो हम लोग तो उल्टा डर जाएंगे ऐसे धाम में जाने के लिए अरे बाप भूख प्यास भी नहीं है और शरीर के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो फिर टाइम पास कैसे होगा? लोगों का शरीर से कनेक्टेड जो एक्टिविटीज हैं इतने इलैबोरेट हैं कि नहाने के लिए ऐसे ऐसे आलीशान बाथरूम बनाते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे पूरा लाइब्रेरी खड़ी कर दी है बाथरूम के अंदर. ऐसे अंदर जाते हैं जैसे कि जीवन भर उधर ही बिताना है. उधर सारे मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये वो है. तो शरीर के लिए, चाहे वो कोई शरीर को साफ करने की प्रक्रिया हो, चाहे शरीर के अंदर कुछ डालने की प्रक्रिया हो, सबको इतना इलैबोरेट भौतिक संसार में लोग क्यों करके रखते हैं? क्योंकि इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं. तो इसलिए इसको क्यों ना इलैबोरेटली वैरायटीफुल तरीके से करें, चाहे वो नहाना हो, चाहे वो कपड़े पहनना हो, चाहे वो कहीं अपने स्वयं जैसे वर्जिश करने के लिए जाते हैं, जिम में जाते हैं, दौड़ने जाते हैं इत्यादि. कितना वैरायटी है उसके अंदर. एनीथिंग रिलेटेड टू द बॉडी, वी ह्यूमन बीइंग्स हैव इलैबोरेटेड इट टू सच एन एक्सटेंट, माइंड बॉगलिंग. तो यदि अचानक, जैसे कि एक एक्सपीरियंस आता ना, जैसे निर्जला एकादशी, जब साल में एक बार वो आती है, पांडव निर्जला एकादशी आती, तो उसमें पता है कि कुछ खाना तो छोड़ दीजिए, पीना भी नहीं मिलने वाला. तो कई बार डिवोटीज जो प्रैक्टिस्ड नहीं है हियरिंग चैंटिंग करने के लिए, या वो हायर टेस्ट नहीं मिला है, उनके लिए पांडव निर्जला एकादशी इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है? क्योंकि इतना यूज्ड टू है बाकी के दिन बॉडीली एक्टिविटीज में. हाँ, और कैसे समय बीतता है, जैसे कोई जब खाने के लिए बैठता है तो इलैबोरेट उसको करके करता है. कितना समय जाता है उसको, उसकी तैयारी के लिए. सोने के लिए कितना इलैबोरेट तैयारियां करता है. तो उसमें उनको मजा आता है. और ये सब ही तो अब साइड में कर लो, तो फिर करें क्या? तो भगवत धाम में करेंगे क्या? इसलिए लोग थोड़ा डरते हैं, नहीं जाना भाई, इधर ही अच्छा है. तो ये जो मुद्दा है, गोइंग टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड सो दैट वी कैन सर्व राधा एंड कृष्णा विदाउट एनी इंपेडिमेंट्स ऑफ द बॉडी. Therefore, we want mukti. किस लिए? उनकी सेवा के. तो ये पॉइंट समझ में आया आपको? अगेन, इसमें कोई बुराई नहीं है चैंटिंग इसमें करने में. इस उद्देश्य से अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो चैंटिंग में कोई बुराई नहीं. जैसे कि पहले स्टेटमेंट में, इसलिए मैंने स्टेटमेंट ऐसे रखे हैं कि पहेली के रूप में है, ताकि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ. आगे चले, भूख लग रही है, अभी तक भगवत धाम नहीं पहुंचे. टू मेंटेन माय इनिशिएशन वाउस, इज दैट अ राइट रीजन? हाँ, इज दैट अ राइट रीजन? दीक्षा हो गई है, गुरु के सामने मैंने प्रण लिए हैं, भक्तों के सामने, डीटीज के सामने, तो इसलिए मैं चैंटिंग कर रहा हूं. इज इट अ राइट रीजन और रॉन्ग रीजन? हाँ, हरी बोल, रेस्टिंग करो. हाँ माता जी, थोड़ा जोर से बोलना होगा. हाँ, दैट शुड नॉट बी द ओनली रीजन. जैसे अगेन, आप उसको किस तरीके से समझते हो. जैसे वो प्रेस्टीज का पॉइंट आया था ना, हमने खाली उसका व्याकरण बदला और मीनिंग बदल गया है ना. व्याकरण बदलने से मीनिंग बदल जाता है. ममता शर्मा गई, ममता शर्मा गई, बदल गया ना मतलब। कोई बात नहीं, तो आप शर्माओ मत। तो जैसे कि मैंने दीक्षा ली है इसलिए मुझे जप करना पड़ रहा है, कैसा लगा ये स्टेटमेंट, है ना? थोड़ा अखर रहा है ना? इसलिए जब भी हम हमारी रोज की साधना करते हैं और अगर ये स्टेटमेंट्स निकल रहे हैं, अरे जप आज पूरा करना पड़ेगा, तो जैसे क्या होगा, जैसे कि मान लो कि आपके घर में किसी का जन्मदिन है, पत्नी का है या पति का है या बच्चे का, अरे आज तुम्हारा जन्मदिन मनाना पड़ेगा, कैसा लगता है ये स्टेटमेंट? नबद मनाओ भाई। तो वैसे ही आज मुझे जप करना पड़ रहा है, आज एकादशी मनानी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि भाई अभी दीक्षा ले ली है इसलिए। तो ये अगर दृष्टिकोण रहेगा तो वो गलत है। तो सही दृष्टिकोण क्या है, अब इस स्टेटमेंट का सही दृष्टिकोण क्या है? What is the right way to look at this? Intensity of commitment or to please spiritual master, okay? Or Prabhupada ने बहुत simple तरीके से कहा, if you are a gentleman, you will maintain your vows. कि हम इसलिए वाउस को मेंटेन करेंगे क्योंकि ये न केवल एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि मुझसे अपेक्षित है, बल्कि मेरे स्वयं के एक सुसंस्कृत होने की संतुष्टि इसमें मुझे प्राप्त होगी। डिफिकल्ट होगा, सुसंस्कृत होने की संतुष्टि। एक संतुष्टि होती है कि चाहे कोई भी प्रकार से मेरा भरण पोषण हो जाए, मेरे को इंद्रिय भोग मिल जाए, परंतु एक है मुझे इंद्रिय भोग न भी मिले परंतु मैं एक जेंटलमैनली लाइफ जीऊं, उसकी एक सेटिस्फैक्शन जो प्राप्त होती है, दैट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। व्हेन यू डोंट गेट योर बॉडीली प्लेजर्स but you get the satisfaction of sacrificing those bodily pleasures, that is a higher kind of satisfaction than the satisfaction you get by getting those bodily pleasures. So this is what over here, when you maintain the vows which you have taken in front of your spiritual master, the satisfaction which you will get, even though your spiritual master may not know, but jaise ki हम लोग वो एक कैथीड्रल में गए थे, तो कैथीड्रल के अंदर, इटली में ही था कैथीड्रल, तो कैथीड्रल के अंदर बेंचेस थी एकदम, उसके ऊपर कार्विंग हुई मार्बल के बेंचेस, तो बेंच के नीचे भी उतना ही उत्कृष्ट कार्विंग हुआ था जितना कि बेंच के ऊपर था, जैसे कि यहाँ पे आप देखो कार्विंग। तो जब ये पूछा हमने वहां के प्रीस्ट से, तो उन्होंने कहा कि जो ये कारीगर थे वो जानते थे कि बेंच के नीचे कोई जाके देखने नहीं वाला है कि कारीगरी कितनी की है, परंतु उन्होंने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कि भगवान जिनकी आंखें सब जगह पर हैं वो रिकॉग्नाइज करें, तो उन्होंने किन के लिए बनाया था? भगवान के लिए बनाया था जिनकी आंखें सब जगह। So even if your guru is not physically there to see how you are maintaining your vows, the satisfaction which you will get every day that I am fulfilling my vows, that satisfaction is the reason. It's not burden, it इट इज लव एज ही सेड कमिटमेंट. समझ में आया? देन ये तो आसान है, टू प्यूरिफाई माय हार्ट. इसमें कुछ पहेली नजर आ रही है आपको? आई एम चैंटिंग टू प्यूरिफाई माय हार्ट, इज इट रॉन्ग, इज इट राइट? व्हाई यू वांट टू प्यूरिफाई योर हार्ट? माय क्वेश्चन इज, हाँ ठीक है, अनर्थ को आप धोना चाहते हो, क्यों धोना चाहते हो? वाह, सब कुछ होने के बाद एक प्यूरिफाइड हार्ट हो गया आपका, क्यों चाहते हैं प्यूरिफाइड? हाँ, अभी आप लोग एकदम लाइन पे आ रहे हो कि अनर्थों के वजह से हम भगवान को ठीक से प्रसन्न नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू प्लीज कृष्णा. फाइनल रीजन टू प्लीज राधा एंड कृष्णा. तो हमारे चैंटिंग का एक्चुअली एक ही रीजन है. कौन सा रीजन है? लास्ट वाला. देयर इज ओनली वन रीजन विच वी शुड बी हैविंग टू चैंट, टू प्लीज राधा एंड कृष्णा, एंड ऑल द अदर्स दे विल हेल्प अस टू रीच टू द लास्ट रीजन, टू प्लीज राधा एंड. And that is called vision. जब हम, जैसे वो ताजमहल का उदाहरण दिया, तीन मिस्त्री, तो हाँ हम लोग जब जप करने बैठे हैं और कोई बाहर वाला आकर हमको प्रश्न पूछे कि आप जप क्यों कर रहे हो, कोई अगर हमको ये सारे पूछे कि क्या तुमने दीक्षा ली है तुम्हारे वाउज को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, कर्म बंधन से मुक्ति के लिए कर रहे हो, या ये प्रेस्टिजियस है इसलिए कर रहे हो, अभी आपके पास ये सारे सवालों के जवाब मिल गए देने के लिए, ये रिपीट करें? आप बोले अभी तो मत करना. एंड फाइनली ये सब का निचोड़ क्या है? टू प्लीज राधा एंड. तो अगर आप पहले ये जवाब दे दो कि राधा और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो कैसे ये सब कुछ, ये बाकी सब कुछ करके हम फाइनली उनकी प्रसन्नता के लिए क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. थैंक यू. किसी का कोई प्रश्न है? Any comments?
तो उसमें मतलब जो आपने कहा वो बात मुझे समझी कि मुझे एक ऐसी बॉडी मिले जिससे मैं हमेशा बिना किसी इम्पेडिमेंट के राधा कृष्ण की सेवा कर सकूं. लेकिन अभी सपोज मुझे 10 साल हो गए जप करते, और मैं अभी भी जप करने से पहले या जप करते वक्त भी यही सोचता हूँ कि मुझे कर्म बंधन से छुटकारा पाना है. और अगर वो बात नहीं है ध्यान में कि मुझे ये क्यों छुटकारा पाना है, तो वो ऑफेंस हुआ ना?
नहीं, उसको ऑफेंस नहीं कहेंगे. देखिए, ऑफेंस जो है, जो आप 10 नाम अपराध बोल रहे हो, कर्मकांड, इसको कर्मकांड समझना. कर्मकांड विचार में कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है. कर्मकांड विचार क्या है कि मैं जप करूं, जप करने से मुझे ये मेरे इंद्रिय भोग के साधन प्राप्त होंगे, वो है कर्मकांड विचार.
हाँ नहीं, लेकिन वो नहीं समझा, उसके बाद ऑफेंस होता है या नहीं? मतलब अगर हम 10 साल बाद भी वही सोचते हैं कि
हाँ, तो वही है. देखो, इस प्रश्न, ये जो प्रश्न आपने पूछा है, इस प्रश्न को, इसका पूरा पूरा प्रश्न आपको सुनाना होगा. अभी अगर खाली आप इतना ही सुनाओगे कि जब करते समय मैं ये सोचता हूं कि मेरे कर्म बंधन से मुझे मुक्ति हो जाए, जैसे कि मान लो स्पेसिफिकली कोई भक्त है जो कि बीमार ग्रस्त है, हाँ, और पिछले कर्मों के वजह से उसको जो भी बीमारी हुई है उसकी वजह से वो त्रस्त है, तो जब करते समय प्रार्थना कर रहा है कि भगवान हरे कृष्णा मुझे इस बीमारी से दूर कर दो, दूर कर दो, दूर कर दो। प्रश्न ये है, भगवान ये पूछेंगे ठीक है बीमारी से दूर कर दूंगा, बीमारी दूर होने के बाद तुम क्या करोगे? तो मान लो अगर वो जप करते समय अपनी बीमारी इसलिए दूर करना चाहता है ताकि उस स्वस्थ शरीर से वो एक आराम का इंद्रिय भोग जीवन जिए, तो वो ऑफेंस है। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाई यू, द क्वेश्चन इज नॉट हा यू नो whether karma bandhan will be gone or not, the question is what you will do after your karma bandhan is you are relieved from it, what will you do with that mukt life, that is the question, that will decide whether it is offense or not. Hari bol, jai shila prabhupad ki jai, anant koti vaishnav vrind ki jai.